नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम डॉक्टर लुका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इन दिनों हम अपने इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के कैंसरों के विषय में विस्तार पूर्वक बातचीत कर रहे हैं और श्रोताओं, हमें पूरा विश्वास है कि हमारी इस बातचीत से आपको लाभ मिल रहा है। आज हम देखेंगे गर्भाशय के कैंसर के विषय में डॉक्टर लुका क्या कहते हैं, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक मधुर गीत। आइए सुने डॉक्टर लुका की ये वार्ता गर्भाशय का कैंसर।
प्रिय मित्रों, आप सबको मेरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, शीला 65 वर्ष महिला थी जो महानगर में रहती थी। उसके दोनों बच्चे बड़े हो गए थे और वह अपने एक बच्चे के साथ रह रही थी। मित्रों, एक दिन शीला ने देखा कि उसके गर्भाशय से रक्त स्राव हो रहा है। वह तुरंत अस्पताल गई। डॉक्टर ने उसकी परेशानी सुनी, परीक्षण किया और परीक्षण तथा खून की जांच लिखी और एक्सरे के लिए भी कहा। उसे स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास भेजा गया। अगले दिन वह स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास गई। डॉक्टर ने उसका परीक्षण किया और गर्भाशय की छिल्ली का एक अंश निकालकर प्रयोगशाला में भेजा। उसने गर्भाशय का एक्सरे भी करवाया। यह एक्सरे अल्ट्रासाउंड कहलाता है। मित्रों, इसमें ध्वनि तरंगे अंग से टकराकर लौटती हैं। कुछ दिन बाद जब परीक्षण रिपोर्ट आ गई तब वह फिर डॉक्टर के पास गई। उसके खून की सब रिपोर्ट सही थी। अल्ट्रासाउंड में कुछ दोष दिखाई दे रहे थे और उसके गर्भाशय के उत्तकों के परीक्षण से कैंसर की संभावना प्रकट हो रही थी। शीला ने अनेक प्रश्न नहीं पूछे, केवल डॉक्टर की सलाह को ध्यान से सुना, क्योंकि वह किसी भी गर्भाशय के कैंसर से पीड़ित स्त्री को नहीं जानती थी। घर आकर उसने अपनी पुत्री से इसका उल्लेख किया। उसकी पुत्री को चिंता हो गई। उसने अनेक प्रश्न पूछे। वह डॉक्टर के पास जाकर अपनी माता और डॉक्टर के साथ परिस्थिति पर विचार करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने डॉक्टर से समय लिया और कुछ दिन बाद डॉक्टर से भेंट करने गए। डॉक्टर ने शीला और उसकी पुत्री को बताया कि कैंसर आरंभिक अवस्था में ही है। उन्होंने डॉक्टर से पूछा कि कैंसर का निदान शीघ्र कैसे हो सकता है। डॉक्टर ने कहा कि अभी ऐसे कोई साधन नहीं है कि कैंसर का शीघ्र निदान संभव हो। रोगी को प्रथम लक्षण देखते ही तुरंत डॉक्टर के पास जाना होगा। पहला लक्षण यही है कि गर्भाशय से रक्त स्राव हो, इसलिए कैंसर के निदान के लिए शीला के समान तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मित्रों, शीला के समान असामान्य रक्त स्राव 80% कैंसर का लक्षण है। कुछ स्त्रियों को पेट में दर्द भी होता है, परंतु ऐसा बहुत कम होता है। गर्भाशय के कैंसर से ग्रस्त स्त्रियां प्राय 50 या 70 वर्ष की होती हैं। गर्भाशय के कैंसर के जोखिम कारक हैं मोटापा, अनेक संतानोपत्ति, एस्ट्रोजन नामक दवाई खाना, छाती के कैंसर की एक ही दवा लंबे समय तक खाना इत्यादि, और कुछ युवा स्त्रियां जो महीनों मासिक धर्म से चूकती हैं। मित्रों, शीला जानती थी कि गर्भाशय का कैंसर कितना अधिक है। यह सामान्यता अधिक नहीं है, परंतु यह स्त्रियों के जननेंद्रिय कैंसर में दूसरा सबसे अधिक सामान्य कैंसर है। शीला और उसकी पुत्री ने उपचार के विषय अनेक प्रश्न पूछे, जिसकी चर्चा हम अभी करेंगे, परंतु इससे पूर्व हम उनकी चिंताओं के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, यह महत्वपूर्ण है क्योंकि डॉक्टर ने तो कहा था कि यह उपचार से स्वस्थ हो जाएगी, परंतु उनकी चिंता का विषय था कि उसकी मृत्यु समय से पूर्व ना हो। वे इस चिंता पर कैसे जय पाएं? शीला की एक सहेली ने उसे कहानी सुनाई थी कि एक स्त्री को भी रक्त स्राव की बीमारी थी और उसे चंगाई देने वाला एक पुरुष प्रभु यीशु था। उसने शीला को बताया कि वह कहानी बाइबल में लिखी है। शीला ने अपनी एक सहेली से बाइबल मांगी और खोज कर वह कहानी पढ़ी। यह कहानी हमें मित्रों लूका उसके 8:42-48 में मिलती है, जहाँ पे इस प्रकार लिखा है, क्योंकि उसके 12 वर्ष की इकलौती बेटी थी और वह मरने पर थी। जब वह जा रहा था, जब लोग उस पर गिरे पड़ते थे, एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी, तो भी किसी के हाथ से चंगी ना हो सकी थी, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ? जब सब मुकरने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिरी पड़ती है। परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि उसने किस कारण से उसे छुआ और कैसे तुरंत चंगी हो गई। उसने उससे कहा, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा। विचित्र कहानी है ये मित्रों, यीशु के वस्त्र के स्पर्श मात्र से ही वह रोग मुक्त हो गई। चमत्कार, यह कैसे संभव था कि वह तुरंत पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई? मित्रों, क्योंकि यीशु एक सदाचारी ही नहीं परमेश्वर का पुत्र भी था, स्वयं बल्कि वो परमेश्वर था, जगत का अनंत परमेश्वर, जो पृथ्वी पर आया कि संपूर्ण मानव जाति उद्धार पाए। यीशु के बारे में एक और मनुष्य ने लिखा, उसका नाम यूहन्ना था। वह कहता है, जो कि हमें यूहन्ना उसके 20 अध्याय और उसके 30 और 31 पद में लिखता है कि प्रभु यीशु ने अनेक अन्य चमत्कार किए जो लिखे नहीं गए हैं। ये चमत्कार इसलिए लिखे गए हैं कि आप विश्वास करें कि प्रभु यीशु ही मसीह है और परमेश्वर का पुत्र है, और विश्वास करने के कारण उसके नाम में जीवन पाएं। मित्रों, यह एक अति महत्वपूर्ण बात है। प्रभु यीशु हमें शारीरिक जीवन की पूर्णता देने ही नहीं आया था, परंतु हमें सच्चा जीवन देने आया था, वर्तमान ही नहीं अनंत जीवन देने आया था। शीला जैसों को मरने का डर होता है, मृत्यु तो वास्तव में प्रभु यीशु के साथ अनंत जीवन का आरंभ है। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, मित्रों, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया कि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मित्रों, अब प्रश्न यह उठता है कि हम ये अनंत जीवन कैसे पाएंगे? शीला जानती थी कि वह अनंत जीवन कैसे पाएगी, और अब और सदा के लिए वह परिपूर्ण जीवन कैसे प्राप्त कर सकती है? मित्रों, हम इसकी चर्चा करने से पूर्व शीला के उस प्रश्न पर ध्यान दें जो उसने और उसकी पुत्री ने गर्भाशय के कैंसर के उपचार के बारे में डॉक्टर से पूछा था। इसका क्या उपचार है? मित्रों, उपचार से पूर्व यह जानना आवश्यक है कि कैंसर कहाँ तक फैल गया है, क्योंकि इसी के आधार पर उपचार आरंभ किया जाएगा। यदि कैंसर केवल गर्भाशय तक ही सीमित है तो ऑपरेशन ही पर्याप्त होता है, परंतु यदि कैंसर गर्भाशय के बाहर पहुंच गया है तो अन्य उपचार की आवश्यकता होगी। इसलिए उपचार से पूर्व अनेक परीक्षणों की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर छाती का एक्सरे कि कैंसर फेफड़ों में तो नहीं पहुंच गया है, पेट का MRI और कैट स्कैन कि कैंसर पेट के अन्य भागों में तो नहीं फैल गया। डॉक्टर की समझ के अनुसार अन्य जरूरी परीक्षण भी आवश्यक होंगे। मित्रों, इन सब आवश्यक परीक्षणों के बाद डॉक्टर ऑपरेशन का समय नियुक्त करेगा। गर्भाशय के कैंसर के 3 उपचार हैं। पहला और सबसे अधिक महत्वपूर्ण है ऑपरेशन, जिसमें रोगी के शरीर, गर्भाशय और हिमाशय पूर्ण रूप से निकाल दिए जाते हैं। यह एक बड़ा ऑपरेशन है। यदि डॉक्टर अनुभवी है तो ऑपरेशन सफल होता है। यह भी आवश्यक है कि डॉक्टर गर्भाशय के कैंसर का अनुभवी हो, जिससे कि यदि कैंसर गर्भाशय के बाहर चला गया है तो उसे भी देख पाए। मित्रों, ऑपरेशन में समय लगता है और ऑपरेशन के बाद रोगी को स्वस्थ होने में कई सप्ताह लगते हैं। ऑपरेशन में डॉक्टर निश्चित करेगा कि कैंसर गर्भाशय की दीवारों के परे गया है या नहीं। यदि फैल गया है तो डॉक्टर 2 और उपचार करेगा, जो या तो रेडिएशन हो या दवाइयों द्वारा चिकित्सा। यद्यपि ये चिकित्सा रोगी के लिए असुविधाजनक होती है, आवश्यकता पड़ने पर इनका उपयोग अनिवार्य है। मित्रों, यह महत्वपूर्ण क्यों है मैं आपको बता दूं, क्योंकि कुछ रोगी तो स्वस्थ हो जाते हैं परंतु कुछ रोगी अब भी संक्रमण मुक्त नहीं होते, परंतु उनकी कष्ट और दर्द बहुत कम हो जाता है और उनकी आयु बढ़ जाती है, जो बिना उपचार संभव नहीं। मित्रों, निसंदेह रे चिकित्सा और दवाइयों का गौण प्रभाव अवश्य पड़ता है। यह उपचार सामान्यता अति सूक्ष्म होते हैं और अधिकांश रोगी इसका चुनाव करते हैं। स्त्रियां जो रक्त स्राव के कारण तुरंत डॉक्टर के पास चली जाती हैं, उनमें से अधिकांश का कैंसर गर्भाशय तक ही सीमित रहता है। ऐसी स्थिति में उन्हें कैंसर से पूरी तरह मुक्ति प्राप्त हो जाती है। शीला को डॉक्टर ने कहा था कि उसका कैंसर गर्भाशय तक ही सीमित है और ऑपरेशन द्वारा उसका उन्मूलन हो गया है, इसलिए उसे ना तो रे चिकित्सा और ना ही दवाइयों की आवश्यकता पड़ी थी। निश्चय ही वह शीला और उसकी पुत्री के लिए शुभ समाचार था। मित्रों, प्रिय मित्रों, डॉक्टर ने उसे यह भी बताया कि उपचार की कोई गारंटी नहीं है, उसे सतर्क रहना होगा। 5 वर्ष बाद यदि कैंसर लौट आने का संकेत नहीं मिला तो वह स्वयं को रोग मुक्त मान सकती है। यह सुनकर शीला और उसकी पुत्री को चिंता हुई। अब प्रश्न यह है कि वे इस चिंता को कैसे दूर करें। मित्रों, शीला ने बाइबल पढ़ना आरंभ किया और वहां उसे पौलुस का परामर्श मिला, जो कि हमें फिलिप्पियों उसके 4:6-7 में मिलता है, जहां पे इस प्रकार लिखा है, किसी भी बात में चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। मित्रों, यह पढ़कर उसे शांति प्राप्त हुई, परंतु उसके मन में यीशु को जानने की प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई। उसने एक अपनी सहेली से सुना था कि प्रभु यीशु के साथ व्यक्तिगत संबंध रखना जरूरी है। जैसे कि कहानी में है कि उस स्त्री ने यीशु के वस्त्र का व्यक्तिगत स्पर्श किया और रोग मुक्त हो गई। मित्रों, व्यक्तिगत संबंधों के कारण वह रोग मुक्त हुई थी। शीला की सहेली ने बताया कि उसे अपने अनुचित काम या पाप प्रभु यीशु के समक्ष स्वीकार करने होंगे और वह उसे क्षमा करेगा। तब वह अपने पुराने पापों के बंधन में नहीं रहेगी। यीशु उसे मुक्ति दिलाएगा और उसका जीवन स्वतंत्र होगा। वह यह कैसे करेगी? मित्रों, उसकी सहेली ने कहा कि उसे विश्वास करना होगा कि यीशु उसके पापों के लिए क्रूस पर मर गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, कि मनुष्य के पाप के कारण उत्पन्न मृत्यु पर अपनी प्रभुता प्रकट करे, और इस प्रकार वह अनंत जीवन पाएगी और वह प्रभु यीशु में परिपूर्ण एवं बहुतायत का जीवन पाएगी। उसकी सहेली ने उसे बताया कि वह बाइबल से रोमियो उसका 10वां अध्याय और 9 पद को पढ़े और उस पर व्यवहार करे। तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। मित्रों, शीला इस पर विश्वास करना चाहती थी और उसने विश्वास किया। प्रिय मित्रों, यदि आप भी इस बाइबल पद पर विश्वास करके अनंत जीवन पाना चाहते हैं तो अवश्य करें। चाहे आपको कैंसर हो या आप स्वस्थ हों, कोई अंतर नहीं पड़ता। रोमियो उसके 3 अध्याय और 23 पद में बाइबल कहती है, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हम सबको पाप मुक्ति की आवश्यकता है, जो केवल प्रभु यीशु ही दिला सकता है। मित्रों, बाइबल यह भी कहती है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान मसीह यीशु में अनंत जीवन है। मित्रों, यह प्रार्थना जो मैं करने जा रहा हूँ, इसको करके आप मसीह यीशु के द्वारा अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु यीशु, मैं जानता हूँ कि मैंने पाप किया है और मैंने अनुचित काम किए हैं, जिनके लिए मैं केवल आपके दंड के योग्य हूँ, परंतु मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे पापों के लिए क्रूस पर मर गए थे। मैं यह भी विश्वास करता हूँ कि आप मेरे पापों के लिए मर कर फिर जी उठे, कि पाप और मृत्यु पर अपनी प्रभुता और अपनी जय प्रकट करें। मैं आप में अपना विश्वास स्थापित करता हूँ, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। मित्रों, यदि आपने ये प्रार्थना की है तो आपको बधाई हो। आप अब अनंतकाली राजा प्रभु यीशु मसीह की संतान हैं। आपको इसी पल से प्रभु यीशु के साथ अनंत जीवन प्राप्त हो गया है। प्रभु आप सबको आशीष दें।
प्रिय श्रोता, आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको लाभ मिला होगा। यदि इस कार्यक्रम से संबंधित कोई सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो इस पते पर लिखें, कार्यक्रम डॉक्टर लूका, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। आप हमसे फोन के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 09-588-20414। याद रहे 09-588-20414। तो अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें।